ओम शांति। 24 जून 1971 की मुरली है, अव्यक्त मुरली। अव्यक्त तो इस मुरली से 7 पॉइंट निकाले थे। इस मुरली में सारे ही एक ही टॉपिक पे पूरी मुरली चली है, अंतर्मुक्ता पर। तो एक ही टॉपिक पे 7 पॉइंट है। तो पहला जो है, पहली पॉइंट है अंतर्मुक्ता से। पहले तो अंतर इस मुरली का टाइटल है अंतर्मुक्ता से फायदे। तो अंतर्मुक्ता से ऐसे 7 फायदे हैं। पहला है अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुक्ता से नई नई इन्वेंशन और योजनाएं बनाई जा सकती है। तो बाबा ने इसमें कहा, जैसे वहां जो साइंटिस्ट होते हैं, और तो ये लोग अंडरग्राउंड होते हैं पहले, और फिर नई नई इन्वेंशंस योजनाएं बनाते हैं, नई नई इन्वेंशंस निकालते हैं। तो वैसे ही आप भी अंडरग्राउंड हो जाओ। वहां वो अंडरग्राउंड होते हैं तन से, है ना, फिर मन से। लेकिन यहाँ पहले बाबा ने कहा आपको सबके बीच में रह के कर्म करते हुए अंतर्मुखी होकर नई नई इन्वेंशन निकालना है। और इस मुरली में कहा चाहे बोलो, बोलते हुए भी अंतर्मुखी, कर्म करते हुए अंतर्मुखी। तो नई नई इन्वेंशंस हम नए नए योग के प्रयोग कर सकते हैं, नई नई सेवाओं की योजनाएं बना सकते हैं। दूसरी पॉइंट है अंतर्मुक्ता से बचाव। तो बाबा ने कहा कैसा ही वातावरण हो, इसमें कैसे ही वातावरण में अगर अंतर्मुखी आप रहेंगे तो आपका बचाव होता रहेगा। तीसरा पॉइंट है अंतर्मुखी रहने से बचत। तो अंतर्मुखी रहने से समय और संकल्प की बचत होगी, है ना, समय और संकल्प की बचत। क्योंकि इसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि हर समय आपका सफल होगा अंतर्मुखी रहेंगे तो काफी सारा समय हमको मिल जाएगा। जैसे पहले हम सोचते थे अगर हमको इस पे चिंतन करना है, किसी मुरली का टॉपिक मिला है, कुछ मिला है, तो इस पे समय निकालना पड़ता था। लेकिन ये मुरली मिलने के बाद हमने चलते चलते ही इसका चिंतन करते रहे, इसका पर सोचते रहे। तो एक ये कि समय हमारा, बहुत सारा हमको समय मिल गया। दूसरा संकल्पों की बचत। तो जो व्यर्थ नेगेटिव संकल्प है उसके लिए समय ही नहीं मिलेगा, तो वो उसकी एक बचत। चौथा है, चौथी पॉइंट ना, सेफ्टी, माया के विघ्नों से सेफ्टी। तो माया माना 5 विकार, तो अगर अंतर्मुखी रहेंगे तो उससे भी सेफ रहेंगे, सेफ्टी रहेगी। पांचवी पॉइंट है मनन शक्ति में बढ़ोतरी होगी। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी होंगे हमारी मनन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। छठी पॉइंट है अंतर्मुखता से अंतर समाप्त होगा। जो बाप और बच्चों के बीच का जो अंतर, जो गैप है, वो समाप्त होगा। और सातवीं पॉइंट है इसी मुरली में जो बाबा ने कहा कि ब्रेन का, बुद्धि का जो है कारोबार जो है उसको सेट करो। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि संकल्पों की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, एक मुरली में बाबा ने कभी कहा था। तो इसमें बाबा ने कहा कि बुद्धि के कारोबार को सेट करना। तो वैसे ही अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे कि हमको आने वाले 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कैसे संकल्प, कैसे थॉट करना है, क्या काम करना है, बुद्धि से क्या क्या काम हम कर सकते हैं, तो ये सेट करना है। तो हम फिर से रिवाइज करेंगे। 7 पॉइंट है, पहला है अंतर्मुक्ता से अंडरग्राउंड रहेंगे तो नई नई इन्वेंशंस निकालेंगे। दूसरी, अंतर्मुक्ता से बचाव होगा। तीसरा, अंतर्मुक्ता से वो माया, इस मुरली में अलग अलग दोनों, एक माया से विघ्नों की सेफ्टी, और दूसरा बचाव बाबा ने कहा वायुमंडल से, वातावरण से। तीसरा है बचत, अंतर्मुक्ता से बचत होगी समय और संकल्प की। चौथी पॉइंट बाबा ने कहा इसमें सेफ्टी, है ना, माया के विघ्नों से सेफ्टी। पांचवी पॉइंट मनन शक्ति में बढ़ोतरी होगी। छठवी पॉइंट अंतर समाप्त होगा, बाप और बच्चों के बीच में समीपता आएगी। और सातवीं पॉइंट है कारोबार सेट, बुद्धि का कारोबार सेट होगा। तो इस प्रकार ये 7 पॉइंट थी। अंतर्मुखी कैसे बने, अंतर्मुखी बनने के लिए उसके लिए ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कहीं भी हम एकांत में जाने की भी जरूरत नहीं, बाबा ने कहा, क्योंकि हम अंतर्मुखी कहीं भी रहकर बन सकते हैं। और अंतर्मुखी बनने के लिए हमको ज्ञान का चिंतन अपने में खोना होगा, अपने आप से बात करनी होगी। तब हम अंतर्मुखी बन सकेंगे। बाह्य मुक्ता मैंने जो भी हमारे आमने आसपास है उनको देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ेगा, सुनते हुए भी अनसुना करना पड़ेगा, तभी हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। तब भी बाबा ने कहा कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस में हमारे होना चाहिए। जैसे हम कल भी नीचे शांतिवन जा रहे थे, रास्ते पर पूरा बात ही चल रही थी, तो उसमें भी हम लोग मैं बार 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 नहीं नहीं उनकी वो जो बातचीत चल रही थी वो अलग टॉपिक्स अलग अलग बातें चल रही थी, कारोबार की बातें यज्ञ की बातें चल रही थी, लेकिन उसके बीच में भी बार बार मेरे बुद्धि में वही बात बार बार रिपीट हो रही थी कि ये जो 7 पॉइंट है उसको रिवाइज बार 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 वो चल रहा था। तो इस तरह हम अंतर्मुखी बन सकते, बार बार वो रिवाइज हो रही थी ऑटोमेटिकली क्योंकि वो होमवर्क मिला था ना। हाँ, टारगेट फिक्स है, लक्ष्य भी फिक्स हो। हाँ, अंतर्मुखी रहने के लिए स्वयं पे अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान देना होगा बार बार हमको जो बोलता नहीं है उसको अंतर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मौन है तो वो खुद ही जान उनको खुद ही को देखना होगा कि हम अगर मौन है तो हमारा चिंतन क्या चल रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मौन है तो उसका चिंतन एकदम यथार्थ ही चल रहा होगा। कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं तो उसको भी अंतर्मुखी रहने के लिए मौन रहना ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है। बोलते हुए कर्म करते हुए नुकसान, अगर नेगेटिव विचार है और साधनों के विचार और स्थूल चीजों के बारे में अगर विचार करते तो ये नुकसान ही है, नेगेटिव सारा नुकसान ही है। अगर ज्ञान का चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, स्वचिंतन है तो फायदे है। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का डेट है 8/7/73। समय की पुकार मुरली का हेडलाइन 73। मुरली का हेडलाइन है समय की पुकार। बाबा ने मुरली में कहा अमृत वेले के बारे में और समय के बारे में, और मेला चल रही थी उसी समय, मेला के बारे में भी बताया था बाबा ने। पहला पॉइंट है मेला और मिलन। मेले में मिलन होता है, वो कौन सा मिलन होता है और वो मिलन, पहला टॉपिक वही है मिलन और मेला और मिलन। मिलन में प्रैक्टिकली मिलन होता है और यादगार का मिलन होता है। वो मिलन आत्मा रूप से परमात्मा बाप का मिलन होता है और वो मिलन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से वो मिलन होता है और वो मिलन बाप और बच्चों का होता है और वो मिलन सर्व प्राप्तियों का वो मिलन होता है। सेकेंड वन, मेले में क्या क्या होता है। मेले में होता है मैल भी हो जाता है और मेले में स्वच्छ स्वच्छ भी हो जाता है। बाबा ने प्रश्न पूछा था आपने स्वच्छ बना हो या बन रहे हो अभी तक। स्वच्छ होने के बाद क्या होता है, श्रृंगार होता है और तिलक भी मिलता है और मेले में केलपाल भी रहता है। और थर्ड वन है ये वैरायटी ड्रामा है कैसे। थर्ड टॉपिक है ये वैरायटी ड्रामा कैसे। इसमें बाबा ने बताया था माया ने आपको भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं और परिस्थितियों को लेके आते हैं आपके पास, आप घबराओ मत क्योंकि ये भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का ये पार्ट नूंदा हुआ है, इसलिए उसको सभी पार्टदारियों का ये बेहद का पार्ट चल रहा है, ऐसे आप समझ गए तो डरेगा नहीं। इसलिए बाबा ने सिनेमा को भी एग्जाम्पल दिया था कैसे प्रैक्टिकल में सिनेमा चलता है, उसमें भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न पार्ट चलता है। कोई कोई पार्ट आता है घबराने के लिए, आप उसको देख के घबराते नहीं, हंसते रहते हैं, इसलिए ऐसा पार्ट को भी आप घबराओ मत, हंसते रहना करके बाबा ने बोला। और फोर्थ वन है ये अभी कौन सा समय चल रहा है, इसके बारे में बाबा ने बताया था मास्टर रचयिता बन आप भक्तों और प्रजाओं को शक्तियों का वरदान देने का ये समय चल रहा है। अभी तक के लेने का समय नहीं है, अभी देने का समय चल रहा है। आप कितना समय तक लेने लेते हो, आपको रहम आना चाहिए आपको वक्तों को देखकर, क्योंकि आपका वक्त गरीबों से गरीब हो रहा है, उनको देखकर आपको रहम आना चाहिए करके भी बाबा ने बताया। यह समय चल रहा है देने का, आपका पास कितना प्राप्तियों का शक्ति है वो सारा देना ही है। और फिफ्थ वन, व्यर्थ संकल्पों को कैसे समाप्त करना है, इसके बारे में बाबा ने बताया था। बजट रखना है, बजट मना प्लानिंग बनाना है, सारा अमृत वेले अपने प्लानिंग बनाओ मन से, वाणी से और कर्मों से, क्या क्या करना है इसके बारे में आप प्लानिंग बनाए तो पूरा दिन का अलर्ट रहेगा। फिर उसमें चार्ट भी रखना पड़ेगा, आप क्या करना है पूरा दिन में, ऐसा चार्ट रखेगा तो व्यर्थ संकल्प नहीं होता और वेस्ट भी नहीं होता, वेस्ट नहीं होता होता है तो हम बेस्ट बन सकते करके भी बाबा ने बताया। और सिक्स, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, सिक्स वन था बड़े से बड़े इंजेक्शन कौन सा है, वो इंजेक्शन है अटेंशन और चेकिंग की इंजेक्शन। उसके साथ साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का इंजेक्शन, अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर से और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा, ये बड़े से बड़े इंजेक्शन है। और सातवन, सेवेंथ, अमृत वेला के महत्व क्या है, अमृत वेले में जितना जहां उतना नहीं, जितना यहां लेट उतना वहां लेट आएगा, यहां लेट आएगा तो वहां सतयुग में भी आप लेट आते हैं करके बाबा ने बताया। और बाप दादा एंड बच्चों को मिलन का ये अपॉइंटमेंट का समय है अमृत वेला। आप भक्त लोगों के पास बाबा चलने के बाद बच्चे आके अमृत वेले करने के लिए बैठ गया तो आपको बच्चे करके बाबा ने वरदान नहीं देता है उसी समय, नहीं अमृत वेले का समय हम होने के बाद हम जाके वहां उपयोग किया तो अमृत वेले के बाद वहां जाके बैठे गए तो भक्त के पास चलता है, बाबा ने बताया था। आप बच्चे बनकर वरदान भी नहीं ले सकते बाबा के साथ। अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें को जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। और अमृत वेले के बारे में भी बहुत वर्णन किया था बाबा ने, अमृत वेले में देखने के लिए बहुत मजा आता है करके बाबा मुरली में बताया, क्योंकि बच्चे हाँ बच्चों को देख के बहुत मजा आता है बच्चों बाप, हाँ क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसा रहते हैं एक सेकंड में बाबा को याद करते हैं, दूसरा सेकंड में दूसरा टांगी में क्या है टांग जाता है, एक सेकंड में बाबा का याद में रहता है और दूसरी सेकंड ये बाबा का याद में नहीं रहता, दूसरा सेकंड दूसरा संकल्प में भी याद रहता है। फिर कोई कोई बच्चे अच्छा ओम शांति,
ओम शांति। मुरली का डेट है 28/9/69। महावाक्य है पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। तो पहली पॉइंट है कथनी करनी एक करो, तो उसमें हम ब्राह्मणों का काम ही है जो कहना है वो करना है, जैसे बाबा ने कहा और मम्मा ने किया है। दूसरी पॉइंट है सच्चाई और सफाई, सफाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटीपन ना हो, मनसा वाचा कर्मना तीनों में सफाई हो। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म या पुराने संस्कारों का कीचड़ा ना हो, इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। सर्विस एबल बच्चों की निशानियां, तीसरा पॉइंट, तो जो सर्विस एबल बच्चे हैं हर सेकंड हर सर्विस में बिजी रहेंगे। चौथी पॉइंट है अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति होने से ही शक्ति रूप बन सकेंगे। सर्विस करते समय व्यक्त और सर्विस समाप्त होने पर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है, भट्टी का अर्थ, पांचवा पॉइंट है भट्टी का अर्थ, जैसे कोई भी चीज भट्टी में डाले तो उसका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। जैसे बाबा ने कहा है ईंट पकने से पहले मिट्टी होती है, भट्टी में पकने के बाद उसका रूप रंग गुण बदल जाता है। इसी तरह हम सबको भी ऐसी भट्टी करनी है जिससे हमारा रूप गुण और कर्तव्य तीनों बदल जाए। छठी पॉइंट है निश्चय बुद्धि, किसी भी बात में जरा सा भी संशय नहीं, ना बाप में व बाप की नॉलेज में, बाप के परिवार में, इसीलिए कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। सातवीं पॉइंट है नष्टो मोहा, नष्टो मोहा अर्थात देह के संबंध और पदार्थ या साधनों से भी नष्टो मोहा रहना है। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को नष्टा मोहा होने का पाठ पक्का कराया था। ओम शांति। पहली पॉइंट है कथनी करनी एक करो। हम ब्राह्मणों का काम ही है जो कहना है वो करना है, जैसे बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। दूसरी पॉइंट है सच्चाई और सफाई। सर सफाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी पन ना हो, मनसा वाचा कर्मना तीनों में सफाई हो। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म या पुराने संस्कारों का किचरा ना हो, इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तीसरी पॉइंट है सर्विसेबल बच्चों की निशानियां। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके हर संकल्प हर शब्द हर कर्म सर्विस ही करेगा, हर सेकंड सर्विस में बिजी रहेंगे। चौथी पॉइंट है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति होने से ही शक्ति रूप बन सकेंगे। सर्विस करते समय व्यक्त और सर्विस समाप्त होने पर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। पांचवी पॉइंट है भट्टी का अर्थ। जैसे कोई भी चीज भट्टी में डाले तो उसका रूप रंग गुण बदल जाता है। जैसे बाबा ने कहा ईंट पकने से पहले मिट्टी होती है, भट्टी में पकने के बाद उसका रूप रंग गुण बदल जाता है। इसी तरह हम सबको भी ऐसी भट्टी करनी है जिससे हमारा रूप गुण और कर्तव्य तीनों बदल जाए। छठी पॉइंट है निश्चय बुद्धि, किसी भी बात में जरा सा भी संशय ना, बाप में व बाप की नॉलेज में व बाप के परिवार में, इसीलिए कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। नष्ट सातवीं पॉइंट है नष्टो मोहा, नष्टो मोहा अर्थात देह देह के संबंध और पदार्थ या साधनों से भी नष्टो मोहा रहना है। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को नष्टो मोहा होने का पाठ पक्का कराया था। ओम शांति।
ओम शांति। आज टॉपिक है नशा और निशानी। डेट है 5/2/72। हमारा चलन देखकर आप लोग को पता चल गया कुछ नशा चढ़ गया होगा। हाँ, तो इसमें जो 7 पॉइंट निकालने के लिए बोला था, पहला है निशानी पर पहुंचने के लिए नशा। ये नशा कोई साधारण नशा नहीं है, रूहानी नशा। तो बाबा कभी कभी ऐसा बोलता है, तो नशा का अर्थ क्या है, नशा इंटॉक्सिकेशन इंग्लिश में दिया है। हम लोग इसको लगन में मगन भी कह सकते हैं, उमंग उत्साह भी बोल सकते हैं, जैसा खोए रहना ऐसा। और लक्ष्य निशाना अर्थात लक्ष्य की ओर कैसे चलना है, तो नशे से ऐसा निशाना को साधने के लिए महाभारत में भी दिखाया अर्जुन को। तो वो जैसा उसका बड़ा भाई भीम को खीर पीते हुए देखा ना रात को,
तो उन्होंने धनुष बाण लेकर चला गया रात को और साधने लगा। हाँ, तो फिर उनका गुरुदेव द्रोणाचार्य आए तो देखा, अरे ये क्या हो रहे हैं, तो आवाज हो रहे बाण छोड़ने का। फिर जाके देखा तो अर्जुन ने अपना अभ्यास में लगे हुए हैं। तो बोला ये तो हमने सिखाया नहीं, ये लेसन तो हमने दिया नहीं। तो उसको धुन लग गया, बोले ये हमने बड़े भैया से सीखा है। वो अंधेरे से खीर पीते हुए उनको देखा। मैंने बोला आंखें है क्या, दिखता है क्या, बोले हाथ का भी आंख है। तो ऐसा कभी कभी हमारे बड़े भाई क्लास कराते कराते एक बात कहते हैं, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ज्ञान थियोरिकल माने कुछ भी नहीं होता है जब तक उसको काम में ज्ञान नहीं ला जाता है। बाबा भी बोलता है तीन जो हमारा महामंत्र होता है ना, बहुत काल का अभ्यास, अचानक और एवरेडी, तो ये बहुत काल का अभ्यास भी दरकार। तो बार बार अभ्यास करने से नशा चढ़ता है। दूसरा पॉइंट है, ये नशा है सर्वश्रेष्ठ नशा। क्यों? नकल हमारे शिलुबेन जी बताया था क्लास में, सब नशे में है नुकसान बिगर सिवाय नारायणी नशा। तो ये नशा ऐसा है, हमें नर से नारायण बनाता है, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं, मनुष्य से देवता भी बना देते हैं। तो ये नशा में हम जब चलते रहेंगे तो हमारा इधर उधर मन नहीं भागेगा, एक ही लक्ष्य और चलेंगे धुन। जगदीश भाई का एक लेक्चर है, उसमें धुन शब्द उन्होंने यूज किया है, मन ही मन धुन धुन चलता रहे। तो हमारे भी जिस लक्ष्य और चलते हैं वही छोड़ के और कोई दूसरे अक्ष नहीं जाए। तीसरा, बाबा ने इसको माने स्थूल नशे के साथ तुलना किया है। जैसा हमारे डॉक्टर साहब एक शब्द यूज करते हैं मधुशाला, मधुशाला से कोई लौटता है तो उसका हालचाल कैसे होता है वो देखने से पता चलता है। अभी देख लिया होगा, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने तो एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, तो हाँ, तो वो माने स्थूल नशा जो पीते हैं उनका हाव भाव देखने से पता चलता है। हमारे एक भाई भी इधर हर बार जब माने विजिटर्स को समझाते हैं ना, बोलेगा नाले में पड़ा हुआ होगा, लेकिन कहेंगे हम तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा ऐसा बता देते हैं। तो ये भी हमारे, हम तो उस नशे में नहीं जाते हैं, बाबा सिर्फ उदाहरण देता है उसका कैसा नशा रहता है, बहुत बड़ा नशा। वैसे भी बाबा हमको क्या बताना बना रहे, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, ऐसा नशा हम रख करके चले तो हमारे जीवन श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवश्य बनेंगे। चौथा है सनसोज फादर। तो बच्चे बाप को दर्शाएंगे, एक ऐसे बाबा ने जो हमें रूहानी ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, धारणा दिए हैं, उस पर हम अमल में लाएंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारा जीवन न चाहते हुए भी अच्छा हो जाएंगे। वहां बताया जो हजारों के बीच में वो रहेंगे भी तो उसका झलक और फलक दिखाई पड़ेगा। तो कौन सी झलक और कौन सी फलक? हाँ, रूहानियत की झलक। तो जैसे बाबा कभी कभी बताते हैं ना, हजारों हंस के बगुले के बीच में एक हंस रहते हैं तो उसको बाहर से दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ये बाबा के बच्चे के अंदर जितने भी विशेषताएं हैं वो कैसे भी करके बाहर से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाबा करण करना बनहार बाबा है, कराएंगे वही है, लेकिन बच्चे निमित्त भाव होकर रहेंगे और सेवा भाव में रहेंगे तो बाहर से उसका जो बाबा बोलते हैं ना हेलो लाइट, प्रकाशमय काया, उसके द्वारा ही वो प्रख्यात हो जाएंगे। पांचवा नंबर है डबल लाइट फरिश्ता। तो फरिश्ता का क्या होता है, दो पंख होते हैं, बाबा ने ये पंख हमारे दिया है ज्ञान और योग की, उमंग और उत्साह की। तो वो भी बताते हैं जो झलक और फलक, ये हजार के बीच में आप रहेंगे तो तब भी आपका सबसे अलग दिखाई पड़ेगा, और आपने जो बाबा का इतना समय से अपनाया और उसका ज्ञान और धारणा को सारा जीवन में लाए, तो फरिश्ता क्या होता है, साक्षात्कार होता है ऊपर से। तो ये धरती पर ही आपको साक्षात्कार हो जाएंगे, लोग कहेंगे आपने जिनको संदेश दिया उन्होंने नहीं माना होगा, फिर बाद में क्या होगा, वो आपका ये फरिश्तेपन की जीवन देख करके कहेंगे वाह हमने बहुत समय गंवा दिया, टू लेट हो गया, अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। छठा नंबर पॉइंट है अहो प्रभु की पुकार को। तो ये लास्ट समय में जो आपका स्थिति देखेंगे डबल लाइट फरिश्तेपन की, तो देख करके सभी ने बाबा बोलते हैं जो अहो प्रभु की तेरी लीला अपरम अपार। तो बाबा के बच्चों की ऐसी अवस्था देख करके उनको जैसे साक्षात्कार होगा तब उन्होंने फिर जय जयकार शुरू कर देंगे जे अभी आज समय नहीं है, जो बनना है अभी कर लो। लास्ट में जो जय जयकार शिव शक्तियां की है, ये सातवां नंबर पॉइंट है जो शिव शक्ति की जय जयकार। बाबा ने जो विशेषताएं भर दी हैं सारे शिव शक्ति के अंदर, पांडव भी उसमें है, तो सभी देख करके लास्ट में जब नारा लगाएंगे यही एक पंथा है और दूसरा कोई नहीं है, तो सभी बाबा के तरफ आएंगे और बाबा से झोली भर के जाएंगे। ये सात नंबर पॉइंट। पहला नंबर था समय नशा, तो नशा पर चलने की निशानी। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ नशा। तीसरा नंबर है ये स्थूल नशा के साथ तुलना। चौथा नंबर है सनसोच फादर। पांचवा नंबर है डबल लाइट फरिश्ता। छठा नंबर है अहो प्रभु की पुकार। सातवां नंबर है शिव शक्ति की जय जयकार। ओम शांति।
ओम शांति। द टॉपिक ऑफ द मुरली इज त्याग एंड भाग्य एंड डेट इज 15 मार्च 1972। तो बाबा ने पहले से भाग्य की डेफिनेशन दी है, उसके बाद फिर उसने त्याग कौन सा किया और त्याग से कितने भाग्य मिलते हैं, तो 6 भाग्य का डिस्कशन यहाँ है। तो पहले पॉइंट नंबर 1 इज भाग्य क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि जो चीज स्वप्न में भी नहीं है, जो चीज संकल्प में भी नहीं है, फिर भी वो चीज प्राप्त होती है, उसे भाग्य कहते हैं। तो मेहनत करके जो चीज प्राप्त होती है उसे भाग्य नहीं कहा जा सकता। और बाबा सेकंड पॉइंट है कि संगम युग का सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग, और देहाभिमान का त्याग करने से संगम युग जितना त्याग करोगे उतना ही भाग्य बढ़ता जाएगा। जितना त्याग करोगे उसी टाइम आपको उसकी प्राप्ति मिलेगी, भाग्य मिलेगा। तो अभी इसके बाद हम 6 पॉइंट देखेंगे कौन सा भाग्य मिलता है। यही खाली सब एक बड़ा त्याग दिया है, देह अभिमान का त्याग, और भी 6 पॉइंट भाग्य दिए है। तो भाग्य नंबर 1 है, इसमें भाग्य नंबर 1 है कि बुद्धि और ज्ञान का अभिमान खत्म हो जाता है, अभिमान आता नहीं है, बुद्धि और ज्ञान का अभिमान आता नहीं क्योंकि देह अभिमान नहीं है। तो भाग्य नंबर 2 है कि देहाभिमान खत्म होने से भाग्यवान बाप आपका बन जाता है, भाग्य दिलाने वाला आपका बन जाता है। और जो संगम युग में हम देहाभिमान छोड़ते हैं उसका सतयुग में प्राप्त होती है कि वो जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। ये दूसरा भाग्य। भाग्य नंबर 3 है कि हम निरंतर बाप की याद में रहते हैं, और दूसरा कि बाप से सभी संबंधों का अनुभव करते हैं, बाप से सभी शक्तियों का अनुभव करते हैं। ये तीसरा। तो बाबा बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा भाग्य है क्योंकि राजयोग का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर प्रत्यक्ष फल मिलता है, तो ये सबसे बड़ा भाग्य है। और भाग्य नंबर 4 है कि हम व्यर्थ को समाप्त करते हैं और भाई भाई की वृत्ति को बढ़ाते हैं, दैट इज भाग्य 4। भाग्य 5 है कि कम कम खर्च बाला नशीन को अनुभव करते हैं। तो इस समय के बारे में, क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि संगम का समय बहुत ही मूल्यवान है, एक भी सेकंड गमाना नहीं चाहिए, हमेशा बाप की याद में रहना चाहिए, तो इससे हम फिर श्रेष्ठ संकल्प निर्माण कर सकते, वेस्ट थॉट को कम करके श्रेष्ठ संकल्प निर्माण कर सकते। और समय के बारे में, तो समय संगम का समय बहुत ही मूल्यवान है, वो गमाना नहीं चाहिए, तो समय की बचत कर सकते। और हर श्वास में बाप की स्मृति आनी चाहिए, हर श्वास में बाप को याद करना चाहिए, तो ऐसे हम कम खर्च बाला नशीन का अनुभव कर सकते हैं। और कम खर्च बाला नशीन से हम व्यर्थ को समाप्त करते और समर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और दिल देहाभिमान के समाप्त होने से हम ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप और शांति स्वरूप बनते। तो हमारा ध्येय है कि लक्ष्मी नारायण बनना, तो उसका स्वरूप बनना है, तो इससे हम वो भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ये सिक्स भाग्य है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये पहला जो पॉइंट था वो डेफिनेशन दिए बाबा ने भाग्य की। दूसरा पॉइंट है जो त्याग किया है, दैट मीन्स देहाभिमान का त्याग। और फिर जो भाग्य दिए, सिक्स भाग्य दिए, पहला भाग्य दिया है कि अभिमान, बुद्धि का और ज्ञान का अभिमान आप खत्म हो जाता है, आता ही नहीं अभिमान। और दूसरा है कि सतयुग में जीवन मुक्ति पथ का, जीवन मुक्ति पथ प्राप्त होता है। और फिर भाग्य देने वाला बाप हमारा बन जाता है। एंड देन थर्ड है कि हम निरंतर बाप की याद में रहते हैं और बाप से सर्व संबंध का अनुभव करते, बाप से सर्व शक्तियों का अनुभव करते। और चौथा है कि हम व्यर्थ से मुक्त होते और फिर भाई भाई का वृत्ति वो बढ़ती जाती है। पांचवा है कि कम खर्च बाला नशीन उसका अनुभव करते, तो समय की बचत कर सकते हैं, उसमें संकल्प भी श्रेष्ठ हो जाता है और हर श्वास में बाप की याद रहती है, स्मृति रहती है। और छठा है कि देहाभिमान खत्म होने से हम ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप और शांति स्वरूप बन जाते, वही हमारा ध्येय है, लक्ष्मी नारायण बनने का स्वरूप बनना है उनका। तो इससे हम देहाभिमान, उससे हमें वृद्धि, देहाभिमान, देहाभिमान की वृद्धि होती है और उसकी सिद्धि भी होती है। तो ये लास्ट पॉइंट है उसमें। ओम शांति।